आज विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पाटुकर। आज मोबाइल वाणी पर समाजवादी चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघु ठाकुर जी विशेष आमंत्रित है। नमस्कार भाई साहब
जी। नमस्कार पत्रकार साहब।
भाई साहब, हम आज विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस के अवसर पर हम आपसे जानना चाहते, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित देश भर में इंडस्ट्रीज एरिया में मजदूरों की क्या स्थिति है और क्या उन्हें उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है?
देखिये, सबसे पहले तो एक बात मैं आपसे कहूं पत्रकार जी, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से बहुत सारे दिवस मनाए जा रहे हैं जो लगभग औपचारिक जैसे बन गए। अब आज विश्व मजदूर कार्यस्थल दिवस है, इसकी जानकारी आज मजदूरों को भी नहीं है। आपके फोन आने के बाद हमने कई मजदूरों से चर्चा की तो कहा कि हमको कोई जानकारी नहीं। उसकी वजह यह है कि जो भारत सरकार है, जिस सरकार का दायित्व तो इन दिवसों के बारे में चर्चा करना या प्रचार करना है, तो भारत सरकार ने इस पर कोई चर्चा नहीं कराई। उसकी भी वजह यह है कि सारे देश में हमारे यहाँ जो मजदूरों की स्थिति है, वो मजदूरों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। एक तो इसलिए चिंताजनक है कि जिन कार्यस्थलों पर मजदूर काम करते हैं, वो कार्यस्थलों पर उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से, बिहार से जो मजदूर लोग आते हैं, वो मजदूर जब काम करने के लिए जाते हैं तो किसी ठेकेदार के यहाँ या किसी काम के स्थल के ऊपर आस पास में कोई झोपड़ी बना के पड़े रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं। और प्राइवेट तो छोड़िए, यहां तक कि भारत सरकार का जो उपक्रम है, रेलवे या अन्य उपक्रम जो है, जो निर्माण का काम करते हैं, उनमें भी तो हजारों की संख्या में मजदूर वही कार्यस्थल के पास में पड़े रहते हैं, खुले में पड़े रहते हैं। ना धूप से रक्षा है, ना पानी से रक्षा है, ना सर्दी से रक्षा है, ना मच्छर से रक्षा है, वो किसी प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। तो कार्यस्थल पर जो सुरक्षा का सवाल है, वो सुरक्षा कहाँ है? दूसरा, उनके साथ में जो शारीरिक अपराध होते हैं, कितने बेचारे मजदूर ऐसे हैं कि जो शारीरिक हिंसा के शिकार होते हैं, और हमारी मजदूर माताएं बहनें भी शारीरिक हिंसा के शिकार होते हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो सुरक्षा की चर्चा है, सुरक्षा के बारे में अभी तक कोई प्रावधान भारत सरकार ने नहीं किए। इस संबंध में मैं सरकार से कहना चाहता हूं, नंबर एक, कि जो भी मजदूर अपने क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उन मजदूरों का एक प्रकार का पंजीयन रजिस्टर बनाया जाए, जिसमें ये अनिवार्य हो कि मजदूर का पंजीयन होगा वो कहां पर काम करने जा रहा है। नंबर दो, जो व्यक्ति उन्हें काम करने के बुला रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर दायित्व हो कि वह व्यक्ति उन मजदूरों के रहने के लिए एक समुचित व्यवस्था करे, उनके बच्चों के लिए व्यवस्था करे। या मैं देखता हूं कि भट्टे पर काम करने वाली, ईंटों का काम करने वाली, मिट्टी ढोने वाली जो मजदूर होती है, उनके बच्चे धूप में एक मामूली से कपड़े पर पड़े रहते हैं और वो बेचारी काम करती रहती है, अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला पाती। तो इनके लिए भी वो सुविधाएं मिलना चाहिए कार्यस्थल के ऊपर, जो सुविधाएं मानवीय सुविधाएं हैं, और जिनमें उनके लिए रहने का स्थान, उनके पानी का स्थान, उनके लिए सुरक्षित स्थान हो। दूसरी बात उसमें ये होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए जो हिंसा होती है, उससे सुरक्षा के लिए भी उपाय होना चाहिए। और उसके लिए सरकार को चाहिए कि कार्यस्थल मजदूर सेल एक अलग से प्रकोष्ठ बनाए, ताकि ऐसे मजदूरों के बारे में नियमित जानकारी लेते रहे, जिनका नाम पंजीयन में होता है, उनका फोन नंबर होगा, उस फोन नंबर पर हर तीन दिन में, चार दिन में वो प्रकोष्ठ के जो पुलिस प्रकोष्ठ के अधिकारी है, वो फोन के पूछे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, उनको जाके देखें, ये भी काम करना चाहिए। तो ये तो एक हुआ। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि वहां स्वास्थ्य के लिए में कोई व्यवस्था नहीं होती है। अगर वो मजदूर बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ इलाज के लिए जाएंगे? उनका तो कहीं नाम भी नहीं होता है। वो बाहर चूंकि काम करने को जाते हैं, तो उनके लिए कोई बाहर कोई सुविधा भी नहीं मिल पाती है, सरकार से कोई सुविधा नहीं है। कहने को आयुष्मान कार्ड की सरकार ने बनाए, तो उस आयुष्मान कार्ड का लाभ इन मजदूरों को नहीं मिल पाता है, जो मजदूर काम के लिए बाहर जाते हैं, कार्यस्थल पर काम करते हैं। तो इसलिए वहां पर भी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि जो मालिक है, ऐसे कई मालिकों का एक ग्रुप बनाया जाए, उस ग्रुप के ऊपर ये जवाबदारी हो कि वो कम से कम सप्ताह में एक दिन वहां पर कोई चिकित्सक को बुला के इनके स्वास्थ्य की जांच, इनकी बीमारी की जांच कराए, और इन्हें निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी की जाए, ये भी कानूनी बनाया जाए। तो एक ये भी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो तीन प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। चौथा ये है कि ये जो मजदूर लोग काम पर जाते हैं, ये जब काम से लौट के आते हैं तो लुटते पड़ते हैं। हमको याद है कि पंजाब से लौट के आने वाले जो बिहार के छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, जब वो रेल से वापस लौटते हैं तो कुछ पैसा कमा के लौटते हैं बेचारे, और रास्ते में उन्हें पुलिस वाले मार के उनसे पैसा छीन लेते हैं। कोई सुरक्षा की नहीं है, कोई व्यवस्था की नहीं है। तो सरकार से हमारा कहना है कि ऐसे मजदूरों को लाने ले जाने के लिए श्रमिक रेलगाड़ियां और श्रमिक कोच लगाए जाए। अगर पूरी रेलगाड़ी चलाना संभव नहीं है या उतनी संख्या मजदूर के लिए है तो श्रमिक कोच चलाए जाए। वो श्रमिक कोच जो है वो बंद रहे और उनकी सुरक्षा की जवाबदारी विस्तृत रूप की जाए, ताकि जो मजदूर काम पर जाते हैं कुछ पैसा कमाने के जाते हैं वो बेचारे लुट पट ना पाए और उनका पैसा छूटा ना जाए। तो ये भी उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ये काम सुरक्षा के लिए सरकार को करना चाहिए। ये तो बात मैंने आपसे कही उन मजदूरों के बारे में जो मजदूर कार्यस्थल पर करते हैं। अब कार्यस्थल पर काम करने वाले दो प्रकार के लोग, एक तो मजदूर भी है और एक कर्मचारी भी है। और आजकल एक नया चलन कॉर्पोरेट चलन शुरू हुआ है, खासकर पिछले कोरोना काल से, कि जो कर्मचारी लोग हैं कंपनियों के, कॉर्पोरेट कंपनियों के, उन कर्मचारियों से कहा गया है कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए। तो शुरू शुरू में तो उस समय तो ये था कि लोगों को भाई कोरोना है कैसे जाएंगे, चलो घर से काम कर रहे हैं। फिर घर पे भी अच्छा लगा कि चलो अपने घर पे ही है, घर से बैठे सब काम कर रहे हैं। अब घर पर काम करने को एक स्थायी प्रक्रिया बनाया जा रहा है और इसके कई प्रकार खतरे हो रहे हैं। एक तो ये है कि मालिक लोगों का बहुत पैसा बच गया, दफ्तर का पैसा बच गया, आने जाने का पैसा बच गया, भत्ता का पैसा बच गया, ये सारा पैसा बच गया। नंबर दो, 24 घंटे उनकी निगरानी है। हालत है कि रात को 11 बजे भी उनको अगर मालिक वो जो मोबाइल दिया जाता है मोबाइल को बंद नहीं कर सकते हैं तो वो सो नहीं सकते हैं। रात को 11 बजे वो फोन करते पूछते ये रिकॉर्ड बताइए या अमुक रिपोर्ट दीजिए। तो वो जो लोग जिनके काम के समय मुश्किल से 8 घंटे होना चाहिए, आज उनका काम का समय लगभग 24 घंटे हो रहा है, यानी किसी भी समय से काम ले सकता है। और हर क्षण मालिक उनकी निगरानी करता रहता है कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, आपका मोबाइल के माध्यम से देखता रहता है। तो एक असुरक्षा की भावना उनमें आई है। और उनकी भी साथ में एक समस्या ये है कि अगर वो काम से हटाए जाते हैं, नौकरी से हटाए जाते हैं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। तो इसलिए कर्मचारी या मजदूर दोनों के लिए रोजगार का विकल्प होना चाहिए। अगर कभी कोई उनको हटाता है तो तत्काल उन्हें क्या राहत मिलेगी। जैसे मजदूरों के लिए अगर कोई शिकायत के आधार पर, कोई कमी के आधार पर मालिक भगाना चाहता है या भगाने का काम करता है, तो फिर मालिक के लिए ये बाध्यता होना चाहिए कि उनको कितने दिन का पैसा कम से कम दिया जाए, उनका प्रोविडेंट फंड काटा जाए, जो भी नहीं काटा जाता है उनका। अभी पहले जो नियम था कि प्रोविडेंट फंड जो था वो 10-11 मजदूरों पर कट जाता था, अब इस सरकार ने जो कानून बना दिया है कि प्रोविडेंट फंड 25-30 के ऊपर काटा जाएगा। तो आमतौर पर जो निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर होते हैं उनकी संख्या एक जगह कम होती है, तो उनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं कटता, उनका कोई गच्छरी नहीं होता, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो इनका एक चलित न्यायालय बनना चाहिए, जो चलित न्यायालय इनके लिए रियायत दे, इनके लिए सुविधा उपलब्ध कराए, इनका प्रोविडेंट फंड, इनका ग्रेचुटी, इनका पैसा के हिसाब किताब देखे। तो कभी अगर मालिक को भगाना चाहता है, गलती से भगाना चाहता है, अपने स्वार्थ के लिए भगाना चाहता है, तो उनके लिए कुछ हार जाना या उसकी व्यवस्था हो। इसी प्रकार से जो कर्मचारी कॉर्पोरेट काम करते हैं उन कर्मचारियों को भी सरकार को चाहिए उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। ये जो वर्क फ्रॉम होम है, इस वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आज लोगों की जिंदगी असुरक्षित दुखी हो गई है। अभी मैं एक समाचार पढ़ा था दिनकर
जी,
कि न्यूयॉर्क के एक कॉर्पोरेट के कर्मचारी ने कहा कि हमारी जो तनख्वाह है, हमारा जो पैकेज है वो कई करोड़ रुपए का है, यानी 54 लाख रुपया, 55 लाख रुपया महीने की उसकी तनख्वाह है, पर हमें सुख नहीं है। और सुख इसे नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक एक मशीन में 8 फोड़ रहा है, लगातार लगा हुआ है, ना अपने बच्चों से मिल सकता है, ना बात कर सकता है, ना छोड़ सकता है, ना जा सकता है, ना बीबी को देख सकता है, ना माँ को देख सकता है, बस केवल उसके ऊपर एक बिग बॉस बैठा हुआ है जो अपने फोन के माध्यम से उसकी हर क्षण निगरानी कर रहा है। अगर निगरानी से बाहर जाते हो तो नौकरी छोड़ के चले जाओ, यानी आपका जो भविष्य है, आपका जो पेट का सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसे के कर्मचारियों के लिए भी अब भारत सरकार को सोचना चाहिए, इसकी कुछ व्यवस्था की जाए, ताकि ये जो असुरक्षा कदम हो उसका एक ही रास्ता है कि वो निर्माण के स्थल पर काम करने वाले मजदूर हैं वो, या जो कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं इनको 6 माह से 2 साल के बीच में काम करना अगर उनका होता है तो उन्हें स्थायी कर दिया जाए, स्थायी नियम उनके बनाए जाए, स्थायी मजदूर माना जाए ताकि उनकी सुरक्षा मिल सके।
जी भाई साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, भारत में भारत सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण देश भर में लागू की गई है और अधिनियम में कई सारे नियम भी बने, क्या वो वर्तमान में देश में देखने को मिल रहे हैं? जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस की, तो इस हिसाब से क्या वो सही है?
देखिए, मनरेगा के बारे में जो योजना बनी थी, इस योजना को बनाने के बाद आज की जो सरकार है, सरकार की रियल से चलाने की नहीं, ये इसे कम से खत्म करने में लगी है। वैसे तो अगर आपको स्मरण हो कि जब 2014 में नई सरकार बनी थी तो शायद राजनीतिक कारण से ये संभव हो सकता है, क्योंकि चूंकि ये योजना कांग्रेस कार्यकाल में पारित हुई थी, इसलिए उन्होंने पहले एक साल तक उसको पैसा ही नहीं दिया था और पैसा लगा लोगों का बकाया रह गया था, मजदूर परेशान हो चुके थे। बाद में जब उनको लगा कि नहीं ये लाचारी है या इससे चुनाव को पैसा पड़ सकता है, तो उन्होंने थोड़ा पैसा दिया। दूसरी बात जो मैं आपसे कहूँ वो ये कि ये योजना कांग्रेस के जमाने में पारित हुई थी, पर ये कांग्रेस की नहीं थी, ना कांग्रेस को चाहती थी। श्री मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, वो चूंकि खुद ही कारपोरेट माइंडसेट के व्यक्ति थे, तो वो ऐसी कोई योजना नहीं चाहते थे। उन्होंने इस योजना को पारित ना करना पड़ा, इसलिए काफी प्रयास भी किया था। और अगर एक व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो गैर कांग्रेसी था, भाजपा का पूर्व मुख्यमंत्री था, परंतु उस समय उस संसदीय समिति का चेयरमैन था, वो थे कल्याण सिंह, सॉरी कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह ने जब ये मामला कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में पहुंचाया गया कि साहब उन पर विचार कर लेगी, तो अमूमन क्या होता है कि जेपीसी जो बनती है, जेपीसी कभी भी कोई निर्णय नहीं करते, टालती रहती है। परंतु कल्याण सिंह ने इस योजना के बारे में निर्णय कराया और जिस करके निर्णय कराया, जब विरोधी पार्टी की जेपीसी के अध्यक्ष ने निर्णय करा दिया, तो सरकार के सामने लाचारी थी और फिर सरकार को इसको लागू करना पड़ा। अभी क्या स्थिति है कि इसका पैसा नियमित तौर पर कम किया जा रहा है। देखिए, इस साल पिछले साल 90,000 करोड़ रुपया मनरेगा के ऊपर था, अभी इस साल वो पैसा घट के करीब करीब 70,000 करोड़ के आसपास बचा है। दूसरा, पिछले साल की जो बकाया देनदारियां हैं वो करीब 19,000 करोड़ रुपए की है, यानी वो भी अभी इसी में चुकाना पड़ेगा। तो मोटा मोटी तौर पे आधा 50% ही मिलने का पैसा इस साल सरकार दे रही है, 50% नहीं दे रही है तो काम कहां से हो पाएगा। अब इसके बारे में सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जाते हैं वो दो प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। एक तो यह है कि साहब काम नहीं मिलता है, अब काम नहीं मिलता है या मजदूर नहीं मिलता है, इसकी वजह क्या है? देखिये, मनरेगा में जो काम करने वाला मजदूर है उसके मजदूरी देते हैं 260 रुपया है, 250 रुपया, और वो भी साल में 100 दिन। और वही मजदूर जब दिल्ली में जाके काम करता है, वही मजदूर चेन्नई में जाके काम करता है, उसको एक दिन के मजदूरी मिलती है 500-600 रुपया, कभी कभी भी ज्यादा मिल जाती है। और वो काम भी कर लेते हैं, बीच में छुट्टी पाकर के जब गांव में आ जाते हैं तो अपनी खेती का भी काम देख लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सरकार को अगर मनरेगा को सफल बनाना है तो सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि मनरेगा पूरे समय चालू रहेगी, यानी पूरे साल को रहेगी, नंबर एक बार। नंबर दो, ये करना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के लिए, सबको के लिए एक वेतन नीति बनना चाहिए और न्यूनतम 500 रुपया हिंदुस्तान में मजदूरी का कम से कम तय हो, ये सारे इसको बनाया जाए। अगर मनरेगा की मजदूरी में और गैर मनरेगा वाले निजी क्षेत्र के सेवक की मजदूरी में वेतन का, मजदूरी का अंतर नहीं होगा, तो फिर लोग मनरेगा में काम करने वाले मिलेंगे। इसी बात कही जाती है कि साहब मशीन से लोग काम कराते हैं, अगर मशीन से लोग काम कराते हैं या अधिकारी कराते हैं तो ये तो प्रशासनिक असफलता है, ये कोई नीति की असफलता नहीं है। भाई सरकार को चाहिए कि सरकार देखे मशीन से काम क्यों हो रहा है, यहाँ पे हाथ को काम क्यों नहीं मिल रहा है। और एक और जो समस्या है, कहा जा रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरा कहना यह है कि जो कुछ स्थायी योजनाएं हैं, अब देखिए मैं दो योजनाओं की चर्चा खास करूंगा, एक है हिंदुस्तान का रेलवे, जो रेलवे के निर्माण होता है, रेल लाइन का निर्माण होता है, इसमें एक बड़ा हिस्सा उन श्रमिकों का होता है, उनके पैसे का होता है, जो लोग वहां रेल लाइन को तैयार करते हैं, वहां पहले खोदते हैं, पत्थर डालते हैं, गिट्टी डालते हैं, मुरम डालते हैं, फिर दोबारा पत्थर डालते हैं, फिर गिट्टी डालते हैं, सब काम करते रहते हैं, लगातार करते हैं। तो एक तो हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि मनरेगा का संबंध रेलवे के साथ जोड़ दे, जो तो नई रेल लाइनें गिरना है उन नई रेल लाइनों पे, उनके पास के स्थानों पर, उनके गांव के पास में जो स्थान है वहां पर जो रेल लाइन गिर रही है, उन रेल लाइनों में इनके काम मिल जाए। तो मनरेगा रेल लाइन जोड़ने से रोजगार के लिए भी और रेल के लिए भी एक बहुत उपयोगी साधन हो सकता है। नंबर दो, जो नदियों को जोड़ने की योजना है इसके सारे हिंदुस्तान में नहरों का जाल बिछाना है। जब नहरों का जाल बिछाना है तो मनरेगा के काम के लिए आप नहरों के साथ जुड़िए। गांव को नहरें बनाई जाए, अभी ये क्या कर रहे हैं कि मनरेगा के नाम पर जो काम कराते हैं, तुम्हें काम देना है तो ऐसे काम कराते हैं जो कामों का कोई अर्थ नहीं हो पाता है, जो काम भ्रष्टाचार के मुंह में चले जाते हैं। तो मेरा कहना है कि जो स्थायी दृष्टिकोण के हिसाब से, स्थायी देश के लाख दृष्टिकोण की जो योजनाएं हैं, जिसमें नहर निर्माण है, नदी जोड़ने का काम है, रेलवे वाला काम है, सड़कों वाले काम है, मुख्य सड़क के काम है, आपका तालाब खोदने काम है, इन कामों के साथ मनरेगा को जोड़ना चाहिए ताकि मनरेगा में मजदूर भी मिलेगा, मनरेगा के मजदूर की सुरक्षा भी रही, गांव के पास में घर के पास उसको रोजगार मिल जाएगा और मनरेगा इस देश के लिए एक प्रकार की जीवन रेखा जैसी बन जाएगी। जी दुर्गा जी,
भाई साहब आपसे अंतिम हम जानना चाहेंगे कि आज विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस पर आप मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मजदूरों को मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूर भाइयों, आप अपने भविष्य और समस्याओं के लिए आपको जवाबदार हो। अब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो चीजें प्रभावी होती हैं वो क्या होते हैं। डॉक्टर लोहिया हमारे नेता थे, रामोन लोहिया जी, वो कहते थे कि बदलाव के तीन रास्ते हैं, जेल, फावड़ा और वोट। तो जो जेल है वो संघर्ष का पर्याय है, वोट लोकतंत्र की प्रक्रिया का पर्याय है। पर मजदूर लोग जो है वो 5 किलो अनाज लेकर के अपने वोट को एक प्रकार से बेच देते हैं, कई शराबे बेच देते हैं, कई पैसे मिलते हैं, अपने भविष्य के लिए वोट नहीं देते हैं और न अपने भविष्य के लिए कोई संघर्ष करते हैं। तो मैं मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि विश्व दिवस है, कार्यस्थल कर्मचारियों का, मजदूरों का विश्व दिवस है, पर इससे कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है। अगर हासिल करना चाहते हो तो संगठित हो जाओ, संगठित होकर के लड़ना शुरू करो, आज संघर्ष करो। सप्ताह में एक दिन आप सप्ताह भर काम करते हैं, एक महीने काम करते हैं, महीने में एक दिन कम से कम निकालिए कि एक दिन सारे के सारे मजदूर इकट्ठे होकर सड़कों पर निकलेंगे, अपनी मांगों को सरकार के पास तक पहुंचाएंगे, सवाल के पास तक पहुंचाएंगे। तो संघर्ष है काम करने नंबर एक, और जब चुनाव आए तो चुनाव के दिन जो मजदूर का सहारा बनेगा उसे मजदूर का वोट मिलेगा। इस नारे के साथ अपने वोट का इस्तेमाल अपने भविष्य के लिए करिए, धर्म के नाम, जाति के नाम, शराब के नाम, पैसे के नाम वोट देना बंद करिए, अपने बच्चों के सामने रखिए, उसके भविष्य को सामने रखिए। जिस दिन वोट देने जाते हैं उस दिन सबसे पहले उठ के छोटे से बच्चे की जो आपके घर में हो उसकी पूजा करिए, उसका चेहरा देखिए, उसका चेहरा देख के वोट डाले जाइए। इस बच्चे का भविष्य बनाना है, हमें मजदूरी करके पेट पालना पड़ा है, तो कल इस बच्चे के सामने से कटना हो कि कैसी व्यवस्था तैयार करना है, समाजवादी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, अमीर गरीब ना हो, जाति के भेदभाव ना हो, सामाजिक भेदभाव ना हो, औरत और आदमी के भेदभाव ना हो, धर्म के भेदभाव ना हो, कि कैसी व्यवस्था देश बनाना है, संदेश बनाना है, इसके लिए वोट करेंगे। तो जिस दिन संघर्ष वोट दोनों का रास्ता मजदूर अपनाएगा तभी मजदूर का भविष्य बन पाएगा। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने आज
पत्रकार जी आपके लिए कि आपने इन सवालों को उठाया और बुनियादी ढंग से उठाया, वरना आजकल क्या है कि बहुत सती ढंग से लोग चर्चा करते हैं। आपकी अच्छी बातें हैं, हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपकी जो मोबाइल वाणी है इस वाणी पर जो भी सवाल आप उठाते हैं उन सवालों को गंभीरता के साथ उठाते हैं, गंभीरता के साथ सुनते हैं, वो गंभीरता के साथ प्रस्तुत करते हैं, इसलिए आपको हार्दिक बधाई।
धन्यवाद भाई साहब, आपको भी बधाई। धन्यवाद।